समृद्ध कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसादे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्रिशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म कर्म समे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। आवृत्ति कीजिए।
Bye. पदार्थ जन्मा जन्म आविर्भाव कर्म और कर्म लीला च और मैं मेरा दिव्यम अलौकिक एवं इस प्रकार से यह जो व्यक्ति जानता है तत्वतः यथार्थ रूप में त्यक्त्वा देहम भौतिक देह त्याग कर देहम भौतिक देह पुनर्जन्मा फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है नैति नहीं लेता है माम एति मेरे पास आ जाता सह वह भाग्यशाली भक्त अर्जुना हे अर्जुन स्वयं भगवान का बोला हुआ श्लोक है और अपने विषय में बोल रहे हैं मेरा जन्म कर्म कैसा है इस विषय में बोल रहे हैं मेरा जन्म और कर्म विलक्षण है गौर पूर्णिमा का अवसर है आज से चालू हो रहा है 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा गौर पूर्णिमा के अवसर पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ कहने की इच्छा हुई तो उनके जन्म और कर्म की याद आ गई जन्म कर्म कैसा है भगवान कहते हैं जन्म कर्म से मैं दिव्यम मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं जैसे लोक में जन्म होता है किसी का, वैसे भगवान का जन्म नहीं है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है भगवान का जन्म दिव्य है। इस जगत में जो जन्म होता है किसी पुरुष के पिता के शुक्र से, पिता के शुक्र का चरण होता है और माता के सौनित से मिल करके शरीर बनता है। शुक्र कैसे बना है? शुक्र बनता है वो अन्न का विकार है, भोजन का विकार है। व्यक्ति भोजन करता है वही रक्त मांस बनता है, रक्त बनता है, रक्त का सार अंश शुक्र है, शुक्र का क्षरण होता है, बीज का क्षरण होता है। माता के गर्भ में वो प्रवेश करता है, उसी शुक्र पर जीव को बैठाया जाता है। यह भगवान की व्यवस्था है। वही शुक्र जब माता के सोनित से मिलता है राज से मिलता है तब उससे शरीर बनता है किसी मनुष्य का। इस तरह से वही सुनित मिल करके पहले कलल बनता है, कलम देख रहते हैं पंच रहते हैं विद्भुत बताऊ। दशा है ना तो करकंड, दस दिन के बाद करकंडू बनता है। मांस बनता है, मांस एक महीने में बढ़ करके उसमें सीड निकलता है, सीड और दो महीने में हाथ पैर निकलते हैं। तीन महीने में हड्डी बनती है, चार महीने में उसे भूख और प्यास लगती है। जब 5 महीने का बच्चा होता है उसे 100 जन्मों की स्मृति दी जाती है। बीते हुए जन्म और आगे होने वाले जन्म, इस तरह से वह गर्भ में बच्चा पड़ा रहता है, एक कीड़े की तरह छटपटाता है। उसे 100 जन्मों की स्मृति होती है, फिर वो इस संसार में जन्म लेना नहीं चाहता है, देखता है कि हमको बहुत दुख होगा, तो माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता है। लेकिन 9-10 महीने का होते होते उसको प्रसूति वायु धक्का देती है, वो गर्भ से बाहर आ जाता है। यह जन्म है इस श्लोक में, लेकिन भगवान ऐसे जन्म नहीं देते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं जीव प्रार्थना करता है भगवान से, उनको जन्म मत दीजिए, बेटर है यही समय आपका स्मरण हो रहा है। भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, जन्म के समय प्रसूति वायु उसको धक्का देती है और वो भूल जाता है इस बात को, 100 जन्मों की स्मृति को। और रोते हुए जन्म लेता है, भगवान भी लीला कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रोते हुए जन्म नहीं लिए। भगवान कृष्ण को तो माता देवकी ने कहा कि आप बालक बन जाइए, मनुष्य का बालक। और ये चतुर्भुज रूप से पा लीजिए। तो अपने माता की बात सुन करके श्री भगवान चतुर्भुज रूप से पा लिए। द्विभुज मनुष्य बालक हो गए। पर चैतन्य महाप्रभु की एक विशेषता है कि वे रोए नहीं। कृष्ण का नाम बोलते हुए वे प्रकट हुए और सारे जगत को बुलवाए। उस समय चंद्र ग्रहण लगा था और यहाँ तक कि यमन भी मुसलमान भी हरे कृष्ण बोल रहे थे, हरि हरि बोल रहे थे। हिंदू लोग तो गंगा जी में स्नान करने गए थे तो स्नान के समय जाते हुए आते हुए हिंदुओं को देख करके यवन भी मुसलमान भी बुजुर्ग को चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं, हरि बोल हरि बोल। इस तरह सारे जगत में कीर्तन हो रहा था। कीर्तन कराने के लिए ही जन्म लिए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। जैसे लोक में जन्म होता है मनुष्य का, वैसे चैतन्य महाप्रभु जन्म नहीं लिए। वे शुक्र सोनित से बने हुए नहीं हैं, उनका शरीर दिव्य है, अलौकिक है। पर एक विशेषता है, वे नाम लेते हुए प्रकट हुए। नाम कीर्तन कराते हुए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उस समय सारा विश्व कीर्तन कर रहा था। सभी लोग हरि नाम बोल रहे थे। ब्रह्मांड भर में कीर्तन हो रहा था। सारा स्वर्ग और पाताल सब जगह कीर्तन हो रहा था। ब्रह्मलोक में कीर्तन हो रहा था, उनके सभी पुत्र समक समाधन सनत कुमार सनंदन सब कीर्तन में झूम रहे थे। ऋषि मुनि सभी कीर्तन में झूम रहे थे। चारण गंधर्व सिद्ध सभी लोग, एक भी व्यक्ति बाकी नहीं था। ये सब प्रभाव था भगवान के जन्म का। अद्वैताचार्य जी अपने आप नाचने लगे तो हरिदास ठाकुर उनसे पूछते हैं, आप क्यों इतने उल्लास में हैं, क्यों नृत्य कर रहे हैं? तो उन्होंने जाना अद्वैताचार्य से, आज भगवान का जन्म हुआ है, कृष्ण जन्म लिए हैं, गोरे बन करके गौर हरि के रूप में, गौर हरि के आविर्भाव के लिए अद्वैताचार्य जी ने गंगा जी का पूजन और शालिग्राम की अर्चना किया था और भगवान से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप अवतार लीजिए, आपके बिना भगवत भक्ति का प्रचार कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए आप जन्म लीजिए। तो अपने भक्त की प्रार्थना से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बड़े हर्ष में आनंद में थे, उनका मनोरथ पूर्ण हुआ, भगवान गौर हरि बनकर आ गए। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान का जन्म दिव्य है, दिव्य का अर्थ अलौकिक होता है। सबसे बड़ा मायावादी श्रीमद् शंकराचार्य इसकी व्याख्या किए हैं, वे लिखे हैं अलौकिक। दिव्य का अर्थ दिव्यम अलौकिकम, परलोक में जैसे मनुष्यों का जन्म होता है वैसा जन्म नहीं है। भगवान ने खुद ही कहा था वसुदेव जी से, जब वे सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवकी पृष्णी थी, भगवान के आदेश से देवताओं के दिव्य 12 वर्ष तक 12,000 वर्ष तक तपस्या किए। वह उस जन्म में इसी ब्रज में तपस्या की, भद्र वन में ये भद्र वन द्वादश वनों में एक वन है, यहीं पर कृष्णी और सुतपा तप किए। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्णी के गर्भ से जन्म लिए, इसीलिए उनका नाम कृष्णी हुआ है, कृष्णी गर्भ। सतयुग की बात है, यह भागवत प्रमाण है। ये ब्रज बहुत प्राचीन काल से है, भद्र वन उसी समय से है। सतयुग से है, त्रेता में भी रहा, द्वापर में भी। भगवान स्वयं अविर्भूत हुए पृष्णी से। पृष्णी उस समय देवकी बनी थी, भगवान ने स्वयं कहा कि आप लोग देवताओं के 12,000 वर्ष तक तपस्या किए और मुझे चाहते थे कि पुत्र रूप में, मैं आपका पुत्र बना, मेरा नाम हुआ कृष्णी गर्भ। इसके बाद आप बने कश्यप माता देवकी बनी अदिति, उस समय मैं आपका पुत्र बना, मुझे लोग उपेंद्र कहते हैं। छोटा शरीर था इसलिए उसको वामन कहते हैं। वामनत्वाच वामन, मैं छोटा शरीर वाला था इसलिए मुझको वामन कहते हैं। माता देवकी से भगवान कहते हैं, तुम पहले कृष्णी थी, इसके बाद अदिति बनी और मैं उसी शरीर से तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। तेनैव बपुसा, उसी बपु से। मैं शरीर नहीं बदला, उसी शरीर से आपका पुत्र बना। तेनैव बपुसा, भगवान कहते हैं उसी शरीर से मैं आपका पुत्र बना। इसलिए आपका पुत्र बना और चतुर्भुज रूप दिखाया कि यदि मैं चतुर्भुज रूप से जन्म नहीं लेता, मनुष्य के रूप में जन्म लेता, तो आपको प्रतीति नहीं होती कि मैं वही हूं, मैं विष्णु हूं। अपने दो जन्मों की कथा भगवान ने बताया माता देवकी को, कृष्णी और सुतपा, ने कृष्णी और अदिति, तीसरे जन्म में आप देवकी बनी हैं। वसुदेव जी से भगवान ने कहा, यदि आप दोनों कंस से बहुत डरते हैं तो हमको नंद बाबा बाबा के पास भेज दीजिए गोकुल में। मैं वहां आनंद से रहूंगा, कंस का भय नहीं रहेगा। इसीलिए वसुदेव जी भगवान को गोकुल लेगा जन्म होने के बाद। यही महाराज परीक्षित का प्रश्न है भागवत में। सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, कस्मान मुकुंद भगवान पितृगृहात् व्रजं गतः। भगवान जन्म लेते ही पिता का घर छोड़ करके गोकुल क्यों गए? को वासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सातताम पति, और अपने बंधुओं के साथ गोपों के साथ ज्ञात भी सार्धम कहाँ कहाँ रहे, क्वासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सततम पति। कहाँ कहाँ रहे। भगवान कई जगह रहे हैं ब्रज में, गोकुल, महावन, उसके बाद वे आए गोवर्धन। गोवर्धन से फिर नंदगांव, बरसाना वगैरह गए। माता के प्रार्थना से वे द्विभुज बन गए थे, गोप बन गए। चार भुजा से जन्म लिए थे, लेकिन माता देवकी बहुत डर रही थी कंस से। वो पता लगा लेगा कि आप भगवान मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं, तो आप आपको मारेगा। भगवान इसीलिए वसुदेव जी को आश्वासन दिया कि आप हमको शीघ्र गोकुल पहुंचाइए। यह कह करके वे द्विभुज रूप में हो गए, तब वसुदेव जी उनको पहुंचाए गोकुल। गोकुल में बहुत वर्षों तक रहे, वहां से कई स्थानों में गए। द्वादश वन, ये ब्रज बहुत पुराना है। स्वयंभुव मन्वंतर में जब मनु महाराज राजा थे, उस समय ध्रुव महाराज उनके पौत्र जन्म लिए, और वे वहां तपस्या किए थे। ये भी उल्लेख पाते हैं, फिर बाबास्वत मन्वंतर में भगवान के भक्त सत्यव्रत महाराज मधुबन में आए थे, नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज आए थे। यह प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में मिलता है। अम्बरीश महाराज एक व्रत किए थे, द्वादशी व्रत, व्रत के पारण के अवसर पर उन्होंने ₹60,00,000 गऊ दिया। ब्राह्मणों खिलाया पिलाया खूब अच्छा से। जब पारण का समय आया तो उसी समय दुर्वासा जी उनके पास आए। दुर्वासा जी भगवान शंकर के अंश से जन्म लिए हैं, बहुत क्रोध आता है और दूसरों को तंग करने में उनको आनंद मिलता है, तो वे पारण के अवसर पर आए। उस बात को जानते थे कि राजा बिना ब्राह्मणों को खिलाए स्वयं खाएगा नहीं, और नहीं खाएगा तो द्वादशी व्रत नहीं पूरा होगा, इसलिए वे बहाना किए मेरा कुछ नियम बाकी है, मैं आऊंगा, महाराज ने निमंत्रण दिया आप आइए हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। तब दुर्वासा जी ने कहा दे हमारा कुछ नियम बाकी है, मैं जा रहा हूँ जमुना जल स्नान करके आऊंगा तब आपका निमंत्रण स्वीकार कर लूंगा। तो राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है, लेकिन अम्बरीश मुनि नहीं दुर्वासा मुनि ज्यादा देर करने लगे जमुना जी में, तो राजा अम्बरीश ने वशिष्ठ आदि गुरुजनों से ब्राह्मणों से पूछा इस समय क्या करना चाहिए हमको। दुर्वासा मुनि बहुत देर कर रहे हैं, इससे मेरा द्वादशी व्रत का पालन पूरा नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ इस धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज जल पी लेना पारण भी है और नहीं भी पारण है। केवल जल पी लेने से पारण हो जाएगा और नहीं भी होगा, यही धर्मशास्त्र कहता है। तो आप थोड़ा चरणामृत ले लीजिए भगवान का, उससे आपका पारण हो जाएगा और नहीं भी होगा। यह सुन करके महाराज अम्बरीश ने थोड़ा सा पानी पी लिया है चरणामृत। दुर्वासा मुनि लौटे, वे क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। वे देख लिए कि यह हम ब्राह्मणों को बिना खिलाए खा लिया, जबकि महाराज ने केवल जल पिया था। पूरा जल भी पिए होते तो भोजन नहीं माना जाता, नाश्ता माना जाता है। फिर भी वे केवल चरणोदक पी लिए भगवान का चरणामृत, इसी को ऐसा मान लिए कि यह भोजन कर चुका है, हमको खिलाए बिना ये खा लिया। पहले ऐसी सुदृढ़ परंपरा थी, बिना अतिथि को विशेष करके ब्राह्मण को खिलाए कोई खा ले तो अपराध माना जाता था। इसी अपराध के कारण दुर्वासा में क्रोध आ गया, हमको खिलाए बिना खा लिया। जबकि महाराज अम्बरीश खाए नहीं थे, पूरा उपवास था, 3 दिन का उपवास, द्वादशी के शाम को भी वे नहीं खाए थे, दसवीं के शाम को भी नहीं खाए थे, एकादशी को फिर नहीं, पानी पिए कुछ नहीं, फिर द्वादशी को भी 3 दिन उपवास किया जाता था। 3 दिन के बाद वे जल पी रहे हैं, थोड़ा सा चरणोदक, ऐसे को दुर्वासा ने मान लिया, बहुत उदंड राजा है, ब्राह्मण को मुझको बिना खिलाए खा लिया। इसी कारण से उन्हें क्रोध आया और वे क्रोध से कांपने लगे। कांपते हुए वे अपनी एक जटा उखाड़े, उसको प्रेरित कर दिए अम्बरीश को मारने के लिए। तो चक्र उनके रक्षा में था, सुदर्शन चक्र, देखा कि कृत्या महाराज को मारना चाहती है तो अपने केबिन से आकर के धधकती हुई कृपया को मार दिया। और कृपया ऐसे थे जिसके शरीर से आग निकल रही थी, तलवार लेकर के दौड़ी मारने के लिए। और सुदर्शन चक्र वही था, वो तुरंत आकर के उस प्रचंड अपने तेज से कृत्या को जला दिया। सुदर्शन में तो करोड़ों सूर्य के समान तेज है, कृत्या को भस्म कर दिया। इसके बाद वो चला मुनि के तरफ, तो दुर्वासा वहां से भाग चले। भाग करके वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यहां से हटो, तुम्हारे चलते हमारा ब्रह्म लोक चल जाएगा। प्रचंड तेज है सुदर्शन में, इसके आंच से हमारा लोक जल जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने ऐसे जवाब दे दिया, अम्बरीश को अपनी शरण में नहीं रखा, तब दुर्वासा वहां से भागे कैलाश भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने साफ कह दिया, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम भगवान के भक्त से द्रोह किए हो। लेकिन मैं तुमको उपाय बता रहा हूं, तुम भगवान के पास जाओ। तो दुर्वासा मरता क्या नहीं करता, चले शिव जी के पास निराश होकर के चले, पहुंचे बैकुंठ, जहां सभी प्राणी सुखी रहते हैं, जहां कोई जलन नहीं है। वहां भी दुर्वासा जल रहे थे, सुदर्शन चक्र वहां भी उनको जला रहा था। जा करके भगवान का चरण पकड़े भगवान ने साफ कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्त के अधीन हूं, हम भक्त पराधीन हूं। हे ब्राह्मण आप अम्बरीश का चरण पकड़िए, मैं तो अधीन हूं भक्त के। आप क्षत्रिय समझ करके थोड़ा सा प्रसाद लेने के कारण आप मार रहे हैं, मारने के लिए तैयार हो गए अम्बरीश को, जबकि वे बेचारे व्रत पूरा करने के लिए मेरा चरण चरण जल मेरा चरणामृत पी लिए, ऐसी पर आपने अपराध मान लिया। इसलिए मैं रक्षा नहीं कर सकता, मैं नहीं बचा सकता। अगर आप बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो सीधे अम्बरीश की शरण में जाइए। वही बचा पाए, वही तो कुछ करेंगे। तो दुर्वासा भागते हुए वैकुंठ से निराश होकर के अम्बरीश के पास पुनः आए। उन्होंने विनय किया कि आप ही रक्षा कीजिए, हमारे चरण छूने लगे। चरण छूते समय अम्बरीश महाराज पीछे हट गए, चरण छूने नहीं दिए। अरे ब्राह्मण देव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं क्षत्रिय हूं, अब मेरा चरण मत छूइए। दुर्वासा बड़े दुख में थे, और दुख कहाँ से आया था, यहीं से वैकुंठ से भी निराश लौटे थे। ब्रह्मलोक शिवलोक सब जगह से निराश, यहाँ तक कि भगवत लोक से भी निराश लौटे थे। उन्होंने कहा कि त्राहि त्राहि मुझे रक्षा कीजिए। भगवान भी आपकी रक्षा नहीं किए। तब दुर्वासा कहते हैं मैं आपका अपराधी हूं, इसलिए भगवान हमारी रक्षा नहीं किए, अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। तब अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र से बहुत प्रार्थना किए, यदि हमारे पूरे खानदान में ब्राह्मणों का आदर होता है तो आप छोड़ दीजिए इन ब्राह्मण को, पर चक्र नहीं छोड़ा। अंत में अम्बरीश महाराज ने कह दिया यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो आप शांत हो जाइए। इतना सुंदर सुदर्शन चक्र शांत हो गए। भगवान को भक्त प्रिय है, ब्राह्मण प्रिय नहीं है। भक्त के अधीन है। यह प्रसंग बताता है कि एक तो ब्राह्मण और एक तो भक्त, तो भक्त श्रेष्ठ है। भगवान ने यहां तक कह दिया था, हे ब्राह्मण तुम अपने में और अम्बरीश में अंतर देखो, तुमने उनको मारने का प्रयास किया फिर भी अम्बरीश महाराज तुम्हारी मंगल कामना कर रहे हैं। और तुम केवल खाने के फेर में पढ़ करके उनको मारने का प्रयास किए। तुमको केवल भोजन प्रिय है और भक्त को मैं प्रिय हूं। तुम अपने में और अम्बरीश में अंतर देखो, कितना भारी अंतर पेटू कहीं के। तुमको भोजन नहीं मिला तो मिल गया होता भले एक दो घंटा के बाद, लेकिन तुमने अम्बरीश को मारना चाहा, कृत्य उत्पन्न कर दिया। दीदी मेरा चक्र तुमको नहीं मारा हो, तुम खदेड़ा होता तो तुम और क्या करते। तुम इस लोक उस लोक सब जगह भटकते रहे। तो ये बैकुंठ जाने से पहले सब भगवान को सुनाए हम दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी अब सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किए, जो कुछ हुआ आप गलती माफ कीजिए, भगवान ने भी मुझको भेज दिया, यह कह करके कि मैं भक्त के अधीन हूं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो अम्बरीश महाराज ने फिर प्रार्थना किया सुदर्शन चक्र से। उसी प्रसंग में आया है कि भगवान को वैष्णव प्रिय है, ब्राह्मण प्रिय नहीं है। भक्त किसी भी जाति का हो, कम पढ़ा लिखा हो या कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन वह भक्त है तो बहुत प्रिय है भगवान को। ब्राह्मण होना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है वैष्णव होना, भक्त होना। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राम।